ओंकाराय नमो। अविरल शब्द गणौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान कांति मिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं पाप प्रणाशकं पुण्य प्रकाशकं भव जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री प्रवचन निर्देशिका नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवाः। तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः। तेषां वचोनुसार आसाद्य गणनी प्रमुखारिका श्री ज्ञानमती मात्रा विरचितं श्रोतारः सावधानतया श्रणवन्तु। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। चलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं प्रवचन निर्देश का ग्रंथ के अध्याय का ये मंगलाचरण हुआ है। मंगलाचरण के माध्यम से हमने इस बात को जाना कि भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि के अनुसार गौतम गणधर स्वामी ने दिव्य ध्वनि को द्वादशांग रूप में प्रतिपादित किया। पुनः परंपराचार्यों ने उसको चार अनुयोगों में निबद्ध करके जिनवाणी हमें प्रदान की और वह जिनवाणी कैसी है, सकल कलुष विध्वंसकम्, यानी कि उसके श्रवण करने से सुनने मात्र से संपूर्ण पाप का विध्वंस हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं, मन की कलुषताएं समाप्त हो जाती हैं और कल्याण की भावनाएं वृद्धिंगत होती हैं, धर्म जागृत होता है, पापों का नाश होता है, पुण्य का प्रकाशक है ये ग्रंथ, यानी कि पुण्य की वृद्धि में कारण है और भव जीव मनः प्रतिबोध कारकम इदम् शास्त्रम्। भव जीवों के मन को प्रतिबोध कराने वाला यानी ज्ञान प्राप्त कराने वाले ऐसे ये शास्त्र हैं और शास्त्रों के अनुसार ही पूर्वाचार्यों की वाणी को हृदय में धर करके और अपनी लेखनी को प्रवचन निर्देश का नाम के ग्रंथ रूप में चलाया तो उसको सुन करके कहा गया कि श्रोतारा सावधानतया श्रणवंतु। हे श्रोताजन आप सब सावधानी पूर्वक सजग होकर के अपने मन के कपाट खोल करके और इसको श्रवण कीजिए। जैसे घर के दरवाजे खुलते हैं तो कोई अंदर प्रवेश करता है, इसी प्रकार मन के दरवाजे खोल करके और ज्ञान का प्रवेश उसके अंदर कराइए। तो प्रवचन निर्देश का ग्रंथ 68 ग्रंथों का सार रूप ग्रंथ है। इसमें एक भी पंक्ति अपने मन की नहीं है, सारी पंक्तियां सट खंडागम जय धवला आदि ग्रंथों से ली गई हैं और समस्त ग्रंथों के सार को भर करके समझो कि भगवान महावीर की साक्षात दिव्य ध्वनि से इस ग्रंथ का संबंध जोड़ दिया गया। इसलिए एक एक शब्द को आप सुनिए और हृदयंगम कीजिए। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन माने समीचीन दृष्टि। समीचीन दृष्टि माने आत्मा के अंदर जो पापों की कालिमा की परतें चढ़ी हुई हैं, उन परतों को हटा करके और आत्मा की दृष्टि को समीचीन सच्ची श्रद्धा रूप बनाना, यही सम्यक दर्शन की परिभाषा है। सम्यक दर्शन की संक्षिप्त परिभाषा, आत्मा की दृष्टि को समीचीन बनाना। सच्चे देवसाद गुरु पर श्रद्धान करना। तो ये सरलता से एक पंक्ति कह दी जाती है, लेकिन अंतरंग में जो अनंत अनादिकाल से अनंत कर्मों का लेप हमारी आत्मा पर जमा हुआ है, कर्मों का अंजन कालिमा लगी हुई है, तो जैसे जैसे मन पवित्र होता है, माने कालिमा हटती है, मन पवित्र होता है, तो आचार्यों ने बताया कि ये कर्म की कालिमा अंदर से हटती है तो ऊपर से भी और अंदर से भी मन पवित्र हो जाता है। आपने सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने के लिए 5 पद्धतियों की बात पढ़ी, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि। कर्मों का क्षय और उपशम होने से क्षयोपशम लब्धि और उससे जो आत्मा में विशुद्धि आई, विशुद्धि लब्धि हुई, करण देशना लब्धि, गुरुओं के उपदेश को प्राप्त करना देशना लब्धि, और प्रायोग्य लब्धि के बारे में आपने जाना है। उसी प्रायोग्य लब्धि में शेष बचा हुआ जो मैटर है, शेष बची जो सामग्री है, उस बारे में हम आगे जानते हैं। और संक्षेप में इतना जानना कि जब आत्मा के अंदर विशुद्धि आ जाती है तो प्रशस्त प्रकृति नाम अनुभाग खंडनम नास्ति, तब अच्छी प्रकृतियां जो है, पुण्य प्रकृतियां हैं जिससे आत्मा पवित्र होती है, ऐसी पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग खंडन नहीं होता है, माने उनमें और अच्छी फल देने की शक्ति आती है जिससे पुण्य की हमेशा वृद्धि होती है और उस पुण्य के कारण ही प्राणी को सुख मिलता है, सांसारिक सुख भी और आध्यात्मिक सुख भी मिलता है। अब आगे देखिएगा पेज नंबर 20 के अंतिम पैराग्राफ से विषय का प्रारंभीकरण होता है, संकेत परिणाम वाले संगी पंचेंद्री पर्याप्त जीव के जिस समय कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंद हो रहा है और उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग प्रदेश का सत्व है, उस समय उसके प्रथमोपशम सम्यक ग्रहण की योग्यता नहीं है। ये एक एक पंक्तियां अपने को हृदयंगम करने योग्य है। सम्यक दर्शन के प्रकरण में प्रथमोपशम सम्यक की बात ली, जैसे बच्चा जब पढ़ने के लिए जाता है तो पहले उसे ABCD सिखाते हैं, और भी कठिनाई होती है तो ये फॉर एप्पल सिखाते हैं। ऐसे ही जब अज्ञान अवस्था से ज्ञान अवस्था में आया जाता है तो बाल्यावस्था ही है, और उसमें जो सम्यक दर्शन की शुरुआत होती है उसका नाम है प्रथमोपशम, यानी पहली बार होने वाला सम्यक दर्शन प्रथमोपशम सम्यक दर्शन है, जिसका काल केवल अंतर मुहूर्त है, कम से कम रहेगा तो एक समय तो वो इतना मात्र हमने किया, इसमें असंख्यात हो गए, एक आवली इसको कहते हैं, और इतने में असंख्यात समय जैन सिद्धांत के अनुसार होते हैं, और 48 मिनट का समय उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त कहलाता है, एक मुहूर्त। तो उस अंतर मुहूर्त तक रहने वाले प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के विषय में ही ये प्रकरण चल रहा है। तो कहा कि जब संक्लिष्ट परिणाम होते हैं, किसके, संगी पंचेंद्री पर्याप्त जीव के, सम्यक दर्शन की योग्यता ही उन्हीं के होती है, संगी होना चाहिए, पंचेंद्री होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए, भाव्य होना चाहिए। यहाँ भाव्य की बात इसलिए नहीं कही है कि प्रायोगिक लब्धि तक अभाव्य जीवों के भी परिणाम पहुंच जाते हैं, यहाँ केवल 3 ही विशेषण दिए हैं, संगी, पर्याप्त और पंचेंद्री। जीव के जिस समय कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति का बंद हो रहा है, जैसे मोहिनी कर्म है, मान लो उसकी उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, ऐसी स्थिति का जब बंद हो रहा है और उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग प्रदेश का की सत्ता है, अंदर में सत्ता माने विद्यमान अवस्था है, उस समय उसके प्रथमोपशम समय ग्रहण की योग्यता नहीं है, क्योंकि सारे कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति जब बनेगी तो प्रथमोपशम समय तो नहीं ग्रहण किया जा सकता, उसकी योग्यता नहीं है। ये बात क्या ध्यान ही रखने की, याद करने की है कि ऐसी स्थिति में प्रथमोपशम समय ग्रहण करने की उस जीव के योग्यता नहीं आती है, लेकिन यहाँ अभव्य जीव नहीं कहा है, क्योंकि ऐसी स्थितियां भव्य और अभव्य दोनों को आ जाती हैं। ऐसे जघन स्थिति बंध आदि तो छपक श्रेणी में होते हैं, अतः वहां तो खाई सम्यक्त है। जब छपक श्रेणी माने सातवें गुण स्थान के ऊपर जीव चढ़ते हैं छपक श्रेणी पर आरोहण करके और केवल ज्ञान को प्राप्त करने की स्थिति आ रही है, तो कहते हैं तब कर्मों का जघन स्थिति बंद होता है। जघन स्थिति बंद का मतलब क्या है? कर्म बिल्कुल परिवर्स हो जाते हैं, क्योंकि अब तो उनको कर्मों को नष्ट कर देना है। शुक्ल ध्यान की अग्नि उनके आत्मा के अंदर जल रही है। तो ऐसे जघन स्थिति बंद आती तो छपक श्रेणी में होते हैं, यानी कि तब वो कर्मों का क्षय करने में ही बिल्कुल तन्मय हो जाते हैं। अतः वहां पर छाई सम्यक दर्शन होता है, यानी दर्शन मुनि की सातों प्रकृतियों को शुक्ल ध्यान की अग्नि में वो जला रहे होते हैं। इसलिए यहाँ बताया कि जघन स्थिति बंध में छाई सम्यक होता है और उत्कृष्ट स्थिति बंध में उपसम प्रथमोपसम सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं उठती। तो कहते हैं कि जघन स्थिति बंध में भी इस सम्यक्त की बात ही नहीं उठती प्रथमोपसम की, क्योंकि वहां छाई सम्यक दर्शन होता है। अतः प्रथमोपसम सम्यक्त के सन्मुख होता हुआ ये मिथ्या दृष्टि जीव विशुद्धि की वृद्धि करता हुआ प्रायोगिक लब्धि के प्रथम समय से लेकर पूर्व स्थिति बंद के संख्यात में ऐसे अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण आयु के बिना सात कर्मों की स्थिति को बांधता है, माने मध्यम में आ जाता है। जब उत्कृष्ट स्थिति बंद है कर्मों का तो भी प्रथमोपसम की योग्यता नहीं है, जघन स्थिति बंद है तो भी प्रथमोपसम सम्यक्त की योग्यता नहीं है। अतः बीच की स्थिति, तो बीच की स्थिति को डिटेल किया कि जब वो प्रथमोपसम सम्यक्त के सम्मुख एकदम अपने भावों को करता है तो वही मिथ्या दृष्टि जीव विशुद्धि की आत्मा में विशुद्धि पवित्रता को लाते हुए और पूर्व स्थिति बंद के संख्यात में ऐसे अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, तो सात कर्मों की स्थिति को अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कर लेता है, माने 1 करोड़ से ऊपर और 1,100 करोड़ से, मतलब उत्कृष्ट स्थिति से बीच की स्थिति, नीचे की स्थिति, ये अंत कोड़ा कोड़ी की स्थिति होती है। कल मैंने आपको अंत कोड़ा कोड़ी की परिभाषा भी बताई थी। ऐसी सात कर्मों की अंत कोड़ा कोड़ी स्थिति को ले आता है तब जाकर के प्रायोग्य लब्धि को प्राप्त करता है, यानी कि प्रथमोपसम सम्यक ग्रहण करने के अभिमुख आ जाता है। तो ये स्थिति भव्य जीवों की भी होती है और अभव्य जीवों की भी यहाँ तक स्थिति आ सकती है। अब आप बताओ कितना सुलभ सम्यक दर्शन है और कितना सुलभ भी है, क्योंकि कर्मों की स्थिति बस अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते चले जाएं और आत्मा की विशुद्धि को बढ़ाते चले जाएं, तो अगर हम भव्य हैं कि अभव्य हैं ये तो केवल ही भगवान ही जान सकते हैं। लेकिन हमने समेत शिखर की वंदना की है, हमने अयोध्या तीर्थ की वंदना की है, तो समझो कि भव्यता का टिकट अपने पास है। ये मोटा मोटी पहचान आज का थर्मामीटर बताया गया। ऐसी स्थिति तक अभव्य भी आ जाता है लेकिन उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाता, यानी कि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाता, यानी भावों की उत्कृष्टता आ गई जिसके निमित्त से वह स्वर्ग और मनुष्य गति के सुखों को प्राप्त कर सकता है, नरक और तिर्यंच गति को अपनी समाप्त कर देगा। विशुद्धि तो विशुद्धि है, बस उसकी अभव्यता जो है यहाँ तक आने के बाद भी उसके कपाट को सम्यक दर्शन को प्राप्त करने रूप कपाट को खोल नहीं पाता। तो सात कर्मों की स्थिति को जब बांधता है अंता कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण ले आता है, इस प्रायोगिक लब्धि में बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हें लब्धि सार तथा धवला आदि ग्रंथ से विस्तार पूर्वक समझना चाहिए। ये चूंकि सम्यक दर्शन प्राप्त कराने के लिए भावों को विशुद्ध करने की दृष्टि से ये ग्रंथ आपको कुंजी की तरह से दिया गया है, जैसे 100 तारीख की कोई एक चाबी होती है कि उस चाबी को लगाओ तो कोई भी ताला खुल जाता है, ऐसे ही सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने के 100 ताले की एक चाबी, माने आप लब्धि सार को भी इसमें पालेंगे, धवला को भी पाएंगे, जय धवला को भी पाएंगे, तुलर पन्नति को भी पाएंगे, सारे ग्रंथों की सार को इसके अंदर, लब्धि सार, छपना सार, सब ग्रंथों के सार को भर करके इसे सौ ताले की एक कुंजी, एक चाबी बना दिया है। इसलिए मैं कहूंगी एक एक शब्द इसको पढ़िए, और जो अभी नहीं पढ़ रहे एक दूसरे को आप प्रेरित कीजिए कि आज पंचम काल के अंदर भी आप सब सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। जब नारकी जीव प्राप्त कर सकते हैं तो हम मनुष्य क्यों नहीं कर सकते। केवल रहस्य को समझ ले कि हम ऐसी स्थिति तक अपने परिणामों को ले आएंगे। माने ये चीजें बताई गई, आप मान लीजिए भगवान के दर्शन कर रहे हैं, आपके आत्मा के अंदर एकदम विशुद्धि आई, या किसी संत का प्रवचन सुन रहे हैं एकदम परिणामों में विशुद्धि आ गई, संसार शरीर भोगों से के दुखों से डर लगने लगा, तो बाहर में आप संवेग भावना से युक्त होकर संसार से डर रहे हैं, और अंतर में ऑटोमेटिक ये प्रक्रिया होकर के कर्मों की स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण आएगी, और वही विशुद्धि का नाम है प्रायोगिक लब्धि। अगर हम भव्य हैं तो पग लब्धि के आगे और बढ़ जाएंगे, करण लब्धि में आ जाएंगे। अगर कोई अभव्य है तो वो नियम से मिथ्या दृष्टि है और अनंत काल तक मिथ्या दृष्टि ही रहेगा, लेकिन वो संसार के दुखों को नहीं सुख को जरूर प्राप्त कर लेगा। नवग्रहीय तक आप मिथ्या दृष्टि जा सकते हैं। कौन? जो मुनि पद को धारण कर लेते हैं और पूरी तरह से खूब ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। कहां उनके मिथ्यात्व है उसको भी वो खुद भी नहीं समझ सकते, लेकिन उनकी अभव्यता आड़े आ रही है, परिणाम है, पर वो संसार के दुख में नहीं जाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे, तिर्यंच में नहीं जाएंगे, तो कम से कम नवग्रह तक के देव गति के सुख को तो भोग सकते हैं। इसलिए चारित्र की महानता भी समझना सम्यक दर्शन के साथ साथ। कैसे? चारित्र को धारण करके अगर सम्यक नहीं मिला, सम्यक दृष्टि भी नहीं बने, सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं हुआ, तो भी संसार के सुखों को ही प्राप्त करेंगे, दुख से छूट सकते हैं। तो इसलिए कहा कि इस प्रायोगिक लब्धि में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। माने जितने जीव हैं उतनी तरह की प्रक्रिया है। किसी के कर्मों की थोड़ी स्थिति बन रही, किसी के कर्मों की इतनी सारी स्थिति बन रही, ये सब अपने परिणामों पर आधारित है। इन सब विषयों को लब्धि सार, छपना सार आदि ग्रंथों से समझने की यहाँ प्रेरणा दी गई। आप एक एक ग्रंथों के जब स्वाध्याय करेंगे और एक एक पंक्ति का जब अर्थ खुलता रहेगा तो समझ लो इतना आनंद आता है कि उसका भी शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। विद्वानों का समय कैसे बीत जाता है स्वाध्याय करते करते पता भी नहीं चलता, और जो मूर्ख होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, जिन स्वाध्याय में मन नहीं लगता, या तो वो नींद लेते हैं, या फिर कलह करते हैं, या आपस में प्रपंच करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं। तो अपने को ये जो सूक्तियां आचार्यों ने दी हैं कि मूर्खाणाम तो कलहेन निद्रया कलहेन च, मूर्खों का समय निद्रा में या कलह में चला जाता है, और विद्वानों का समय काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के अंदर मैंने साहित्य को पढ़ने में उनको आनंद आता है। आज भी मैं देखती हूँ ज्ञानमती माता इतनी आनंदित होती हैं, खूब शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन जो भी पुस्तक सामने आ जाती है उसको इतने ढंग से पढ़ती हैं कि ऐसा लगता है कि उसको छोड़ना ही नहीं चाहती। तो इसका मतलब क्या है कि विद्वानों का समय शास्त्र स्वाध्याय में जब व्यतीत होता है तो उससे उन्हें अमृत मिलता है। भोजन से ज्यादा पौष्टिक होता है ज्ञानामृत का भोजन। तो ज्ञान अमृत आपको जो ये पिलाया जा रहा है, इस ज्ञान के अमृत के पीछे आपको ज्ञानमती माता जी का परम उपकार मानना पड़ेगा। ना आपको उपलब्धि सार उठाना है, ना छपना सार उठाना, ना जीव कांड, ना कर्म कांड, ना धवला, ना जय धवला। ग्रंथ है तो कितना, एक छोटी सी पुस्तक प्रवचन निर्देशिका। विद्वानों के हित की दृष्टि से इस पुस्तक को बनाया गया। क्या आप सब विद्वान इन महिमा को समझे जो आज चिल्लाते रहते हैं कि हमारे सम्यक दर्शन है, दूसरे मिथ्या दृष्टि है? नहीं, आप अपने आप अपना सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। क्या इन चीजों को समझो, एक एक पंक्तियों को पढ़ो। हम सम्यक दृष्टि हैं कि केवल अपने को सम्यक दृष्टि मान रहे हैं। तो ऐसे आज के स्वाध्याय का मैं चाहे थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय कराऊं, लेकिन मैं स्वयं चाहती हूँ। सन 1977-78 में भी हमने पढ़ा, प्रशिक्षण शिविर की एक विद्यार्थी के रूप में मैं भी रही हूँ। लेकिन आप जब इनको आपको पढ़ा रही हूँ तो एक एक पंक्ति का अर्थ करते हुए बड़ा अच्छा लगता है, और जैसे अंदर से कपाट खुलते हैं कि देखो इस पंक्ति का ये अर्थ है। यानी कि आयु कर्म को छोड़ करके सारे कर्मों की स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण तक लाई जा सकती है। और अंता कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण तक लाने का मतलब है कि हम ज्यादा दिन संसार में नहीं रहेंगे, भव्य जीव हैं, तो नियम से जल्दी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना।